ليعبدكم وإذ أخذنا ميثاقكم اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد. اب ایک اور میثاق بھی, ایک دوسرے عہد کی بات ہو رہی ہے جو ان سے لیا گیا, اور وہ عہد کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم, کہ تم آپس میں اپنے خون نہ بہاؤ, یعنی آپس میں خون نہ بہاؤ. اپنا خون کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا یہ تو تمہارا اپنا خون ہے, یعنی اپنے لوگ ہیں. تو یہاں پہ بھی کیا, دماءکم, اپنے خون نہ بہاؤ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے, بنی اسرائیل کے لوگوں کے, بنی اسرائیل سے لیا جا رہا ہے نا, یعنی دوسرے اسرائیلیوں کا خون نہ بہاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ کرو. اور یہ بھی عہد مسلمانوں سے بھی لیا گیا. کیا حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا جان, مال, عزت حرام ہے, حرام. سوچیں, حرام ہے. اور دیکھ لیں ہمارے تو قرآن میں بھی یہ ہے نا, آگے آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں کہ کسی کو بھی ناحق قتل کرنا وہ یا پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں. سورہ نساء میں آیت نمبر 93 میں کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے, اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا. ایک جان کو بھی نہیں جان بوجھ کے قتل کر سکتے. لا تسفکونا دماءکم, مت بہاؤ اپنے خون. آج آپ دیکھیں اتنا بلڈ شیڈ ہے, اتنا خون خراب ہے کہ انسان کو کبھی سن کے بھی کراہت ہونے لگتی ہے. یا اللہ اتنا خون خراب ہے کہ انسان کی جان جو ہے نا وہ ایک, میں کہتی ہوں جانور کی, وہ مرغی کی جان سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے انسانی جان, جو آج ہمارے معاشروں میں حال ہے. مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے. اور یاد رکھیں سب سے پہلے قیامت کے دن خون کا فیصلہ ہوگا. ولا تخرجون انفسكم من دياركم, اور دوسرا عہد ان سے کیا لیا گیا تھا؟ نہ تم اپنے لوگوں, اپنی جانوں کو, یعنی کون اپنی جانے, اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو. یعنی اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے لوگوں کو دیکھیں, اس لیے کہ جو اپنے لوگ ہیں نا, اپنے ہی قبیلے کے یا اپنی قوم کے لوگ, بنی اسرائیل کی طرف یہ بات ہو رہی ہے نا. اب ہم ہیں تو مسلمان, تو ہر ایک قوم میں مسلمان ہیں, لیکن ان میں تو بنی اسرائیل کی قوم تھی, تو ان کی قوم کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں. ایک کو گھر سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے گھر کر دینا. کسی کا خون بہانے کا مطلب یہ, اپنے کا خون ہے تو سمجھ لو اب میں نے اپنا خون بہایا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں مسلمانوں کو تو یہ کہا گیا, اشد الکفار رحماء بینہم, یہ کافروں کے ساتھ شدید ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت نرم ہے, بہت رحم کرنے والے. یہ طرز عمل ہونا چاہیے تھا مسلمان کا, لیکن آج کیا ہے؟ اللہ اکبر, کیسے گھروں سے نکالا جا رہا ہے. اجتماعی سطح پہ تو ہے ہی, جو بھی ہو رہا ہے دیکھیں کتنی بڑی مائیگریشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ پٹ پٹ کے جا رہے ہوتے ہیں, گھر چھوڑے ہوتے ہیں, بے گھر ہوئے ہوتے ہیں. آج آپ کے دیکھ لیں, آپ کے ملک میں بلوچستان کا حال دیکھ لیں, وہاں سے کتنے لوگ مائیگریٹ ہوئے. آپ اور علاقوں میں دیکھ لیں, آپ لوگ خود جانتے ہیں, وہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بڑے بڑے سٹیز ایسے ہیں وہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے اپنے گھر جا رہے ہیں. کیوں بیچ بیچ کے جا رہے ہیں اپنی زمینیں وغیرہ؟ کیوں اس قدر لولیسنیس ہے؟ اتنا وہاں پہ رہنا تنگ کر دیا گیا کہ لوگ چھوڑ کے چل پڑے, دوسرے ملکوں میں جا کے پناہیں لے رہے ہیں. اور یہ اجتماعی سطح پہ بھی دیکھ لیں, انڈیویجولز میں بھی دیکھیں کہ گھروں سے نکالنے میں بعض دفعہ مرد بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ, نہ دن دیکھتے نہ رات. ٹھیک ہے, تو ہاں ان کو صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے, تو قوموں کی بات ہو رہی ہے. اسی کو ہم इंडिविजुअल लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि कैसे खून बहाया जाता है। खून अगर जान का नहीं बहाया जाता तो कभी जज्बात का खून कर दिया जाता है। घरों में ऐसा जुल्म होता है, ऐसी बातों के साथ ऐसे तीर चलाए जाते हैं कि दूसरा इंसान छिन्नी हो जाता है, और घरों से इस तरह से निकाल दिया जाता है कि मजबूर कर दिया जाता है कि दूसरा घर छोड़ के चला जाए, या बाकायदा धक्के दे के निकाला जाता है। तुम अकरार, तुम फिर इकरार किया तुमने, ये तो तुम्हारे अपने ही है, तुमने इकरार किया था कि तुम इस अहद के ऊपर कायम रहोगे, इन तमाम बातों को मानोगे। और आज भी सुलह के कई मुआहदे होते हैं, फिर भी आप देखें उसके बाद क्या होता है, किसी को परवाह ही नहीं होती। और किसी मुल्क का कानून भी जो होता है वो भी आपने इकरार किया होता है कि आप इस मुल्क के कानून को मानेंगे, फिर उसके बाद फिर वही चीजें हो रही थी, खून बहाया जा रहा होता है, लोगों को घरों से निकाल के बेघर किया जाता है। सिर्फ किस लिए? मेरी कौम का नहीं है, मेरी जुबान बोलने वाला नहीं, या लूट मार के तौर पर। ऐसे लगता है ये बनी इसराइल की क्या बातें, ये तो हमारे ही दुख है, हम अपने ही दुख समझ लें कि इनको ही एक एक करके देख रहे हैं। इन सारी बातें जो बनी इसराइल के साथ उन्होंने की, जो उनके क्राइम्स थे, जो उनकी हरकतें थी, वो सब हमारे साथ। क्या मुसलमान के लिए नहीं किसी का माल हराम कर दिया गया, किसी को घरों से निकालना, ये क्या है? और जब मर्द बीवी को निकालता है तो वो क्या होता है? वो भी तो अपनी ही थी, एक अहद करके उसको अपने ऊपर हलाल किया था, और फिर उसके बाद कैसे कुछ भी थोड़ी सी भी बात हो तो फौरन इसको अपना हक समझा कि जब चाहूं निकाल के बाहर खड़ा कर दूं। तुमने तो इकरार किया था, वह अंतुम तशहदून, अब तुम गवाही देते हो, तुमने गवाही दी थी। अब ये देख लें कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले की यहूद की बात हो रही है ना, उनसे इकरार लिया गया था, उनके ऊपर तूर को खड़ा किया गया था, तो इनको क्यों कहा जा रहा है कि तुमने गवाही दी थी, तुमने इकरार किया? इसलिए कि देखें जो अहद इनके आबाओ अजदाद के साथ था वही इनके साथ भी है, वही कौम चली आ रही, ठीक है। और दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूद गवाह हैं कि इनकी किताब में ये अहद लिया गया है, वो उन्होंने भी माना इस अहद को, ठीक है। और उस जमाने के लोगों ने भी क्या किया, ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم, फिर तुम में से ही लोग हैं, तुम्हारे में से ही लोग हैं जो कत्ल भी कर रहे हैं लोगों को, और तुम निकाल भी रहे हैं लोगों को घरों से। आप एक मुस्लिम सोसाइटी को देख लें, अपने मुल्क की सोसाइटी को देख लें, फिर बताएं कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। मुल्कों में देख लें, वो मुल्क देखें कि आज सीरिया में क्या हो रहा है, अपने ही अपनों को नहीं मार रहे क्या, और अपने ही असलहा दे रहे हैं कि अपनों को जाके मारो। जो सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं वो भी अपने ही हैं, वो भी मुसलमान हैं। क्या अपने ही अपनों को कत्ल नहीं किया जब इराक और ईरान की जंग हुई? और कई और चीजें आप देखें, अपने ही अपनों को मारते हैं और अपने को घरों से निकालते हैं। तदाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उदवान, तुम चढ़ाई करते हो उनके ऊपर साथ गुनाह के और ज्यादती के, गुनाह और ज्यादती के साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ाइयां करते हो, अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हो। और इस्म और उदवान अलग अलग क्यों कहा गया? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म तोड़ा, गुनाह किया, हुकूल इबाद तोड़ा, हुकूल इबाद में ज्यादती की, उदवान किया। और ये वो लोग कैसे करते थे, इनकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं ताकि इनकी भी हमें समझ आ जाए। आज के वक्त में तो आप अपने सामने देख रहे हैं, मैं तो मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि कैसे ये आते हैं आज सब के सामने, एक बच्चा भी समझ सकता है कैसे कैसे आज खून खराबे हो रहे हैं और कैसे घरों से निकाला जा रहा है, कैसे दर बदर किया जा रहा है लोगों को। अब ये देखने की वहां मदीना की सोसाइटी देखें, यहाँ पे ये आयात उतर रही है, वहां पे तीन यहूदी कबाइल थे मदीना के इर्द गिर्द में रहते थे, उनके आउटस्कर्ट्स में, बनू कुरैदा, बनू नदीर और बनू कैनका, ये तीन कबीले थे, ठीक है। अब क्या होता था कि यहाँ पे इनके स्पेलिंग कैसे होंगे, कॉफ रॉ या जोए और हा जो होती है, हलवे वाली नहीं दूसरी, ये बनू कुरैदा, बनू नजीर दाल से नहीं है, जो से भी नहीं, दौद से बनू नदीर, और बनू कैनका ये तो आप लिख सकते हैं कौफ या नून कौफ आइन के साथ फिर हाँ। तो ये जो कबाइल थे यहूदी कबाइल थे, और यहाँ पे दो अरब कबाइल भी थे, एक का नाम था औस अलिफ वौसी और एक का नाम था खजरज खा जे रे जीन। अच्छा अब क्या था, उस जमाने में भी अलायंसेस होते थे, हलीफ बन जाते थे, बाहम याराना कह लें, बेस्ट फ्रेंड्स कह लें, उस तरह बन जाते थे, यानी कसम खा के दोस्ती कर लेते थे कि बस अब हम सब में एक एक है, बस हम किसी एक के ऊपर भी कोई मैली नजर डालेगा, कोई किसी एक के ऊपर भी मेरे दोस्त के ऊपर या मेरे एलाई के ऊपर कोई हमला करेगा तो समझ लो उसने मेरे ऊपर हमला कर लिया, मैं भी उसके साथ फिर उस जंग करूंगा जिसने मेरे एलाई के साथ दुश्मनी की या उसके साथ जंग की। अच्छा अब क्या था, औस का जो है ना बनू कुरैजा के साथ बाहम दोस्ती थी या हलीफ थे, उसको उसको हलीफ कहते थे, हल्फ लेके दोस्ती की जाती थी ना कि बस हम और तुम एक हैं। अच्छा और खजरज का बनू नदिया के साथ वहां बिल्कुल याराना दोस्ती जिसको कहेंगे। और इसी तरह एक बनू कैनका भी था, बनू कैनका भी खजरज का ही हलीफ था। अच्छा अब क्या होता था, जब औस और खजरज के अंदर कोई लड़ाई मार कुटाई होती थी, कोई जंग होती थी, तो अब ये इनके जो साथ यहूदी कबीले थे एलाइज थे, अब उनको भी मुश्किल पेश आ जाती थी। जाहिर है बनू कुरैजा को जो कत्ल होगा या वो होगा, तो अब औस और खजरत में लड़ाई हो रही है, तो जब ये भी कूदेंगे बीच में जो यहूदी इनके अलाइड अलाइज हैं, तो आपस में ये भी तो लड़ेंगे ना, तो यहूदी यहूदी को भी तो कत्ल करेगा, ठीक है, तो कत्ल तो होगा। और जब एक के साथ दूसरे की जंग होगी और एक दूसरे के ऊपर खून बहाएगा तो कैद भी किया जाएगा, घरों से भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो लड़ाई औस और खजरज में है, लेकिन अब उनके जो एलाइज हैं बनू नजीर और बनू कुरैजा, वो औस का साथ देते थे, बनू नजीर और बनू कुरैजा औस का साथ देते थे, और बनू कैनका जो थे वो खजरज के साथ थे। अच्छा मैंने शायद पहले डिफरेंट कह दिए, इससे याद रखें, इसको याद करना भी एक आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री आप जब तक जानेंगे नहीं ना आगे आयात समझ नहीं आती। फिर मैंने तो इस तरह याद किया कि देखें बनू नज़ीर और बनू कुरैजा, काफ काफ वाले अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं हैं, बनू नज़ीर और बनू कुरैजा एक तरफ है, ठीक है, ये तो दो हो गए यहूदी कबीले। अब इनकी किस वाले अरब के साथ है, अरब कौन सा कबीला, एक औस है और एक खजरज है, अब दोनों में नज़ीर और कुरैजा में रा रा आ रही है ना, तो अब जिस अरब कबीले के साथ इनकी अलायंस होगा वो रा के साथ नहीं शुरू हो रहा, वो औस है, ठीक है। अच्छा बनू कैन का इसमें कोई रा नहीं है, ये हजरत के साथ जाएगा, समझ आ गई बात। तो याद करने के लिए बस एक टिप आपको दे रही हूँ, क्योंकि वरना याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कौन किसके साथ था। तो बनू नजीर बनू कुरैजा रा रा वाले कबीले यहूद के एक साथ है, और उनका जो अलायंस है वो उस कबीले के साथ है जिसमें रा नहीं है, औस है, वो ऑपोजिट्स है ना, ऑपोजिट्स वो एक साथ होते, बनू कैनका और खजरज एक साथ, सही। अच्छा जी अब कई किताबों में आप देखेंगे कुछ और भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा सही यही मालूम होता है। अच्छा अब क्या है, चढ़ाई करते हुए एक दूसरे, अब तुम्हें अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया था कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, तुमने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, गुनाह किया, तुम्हें आपस में भी एक दूसरे के ऊपर हकूक थे, तुम आपस में भाई भाई हो, एक कौम के लोग हो, तुमने हकूकुल इबाद में भी यानी तल्फी की, तो तुमने एक ज्यादती भी की। वइन यअतुकुम उसारा तुफादूहुम, अब जो आपको मैंने बताया कि जब जंग होती है तो कैद भी होते हैं लोग, तो अब जाहिर है दोनों तरफ कैद हुए लोग, तो कोई लोग उधर चले गए कोई उधर चले गए, तो अब मिसाल के तौर पे कोई बनू कुरैजा का बंदा जो है वो खजरज कैद करके ले गए, फॉर एग्जाम्पल दूसरी तरफ वाले अरब कैद करके ले गए, इनके साथ लड़ाई हो रही थी। तो अब ये सारे यहूदी जो है ना, इनकी चूंकि तौरात में लिखा हुआ था, इनकी शरीयत में हुक्म था कि देखो कोई भी यहूदी अगर कैद हो जाए कहीं तो तुम्हें उसको छुड़ाना है, तुम्हारे ऊपर जरूरी है। तो ये कहते थे लो हमारी तो शरीयत के अंदर ये हुक्म है, अब इसकी इतनी पाबंदी करते थे, चल पड़ते थे उसको छुड़ाने के लिए, ये रैंसम दे के ना, फिदिया दे के तो उसको छुड़ाने के लिए एहतमाम करते। अल्लाह ताला ने फरमाया वह मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि एट द फर्स्ट प्लेस तुम्हें तो इनका निकालना ही हराम था, तुमने इनको घरों से निकाला क्यों पहले, इनको दरबदर क्यों किया, मुल्क से निकालते भी हो अपने घरों, उनके घरों से निकालते भी हो, कत्ल भी करते हो, उसमें तो तुमने नहीं सोचा कि तुमसे ये अहद लिया गया कि नहीं कत्ल करना नहीं घरों से निकालना, लेकिन जब वो कैद हो जाते हैं फिर तुम बड़े नेक बन के चल पड़ते हो, पारसा बन के चल पड़ते हो, हमें तो ये हुक्म दिया गया, हमने तो ये मानना, ये क्या सी बात हुई, क्या आज ये हो रहा है, ऐसी कोई आपको शक्ल नजर आती है? जब इराक की मिसाल देखें, जब मुस्लिम ममालिक ने इजाजत दे दी थी कि हमारे ऊपर से जहाज उड़ा के लेकर जाओ और इराक पर हमला करो, और वहां पे जो मुसलमान जख्मी हो जाते थे ना, फिर लाके उनका इलाज कराना शुरू कर देते थे, मुसलमान जो है ना यहाँ पे जख्मी हो गए, पहले तुमने उनको वहां पे उड़ने की इजाजत ही क्यों दी कि हमारे ऊपर से जाओ और जाके उनके ऊपर हमला करो, फिर गैर मुस्लिम को पहले उनका साथ दे लिया कि अपने मुसलमानों को जाके मारो, और उसके बाद फिर उनकी तैयारी भी करनी, उनके इलाज भी करने शुरू कर। हम किस तरह की देखो डबल पॉलिसी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, एट द फर्स्ट प्लेस पहले उनका निकालना ही तुम्हारे पर हराम, तुम एक हुक्म मानते और एक नहीं मानते, उसके बाद वावेला कितना हम करते हैं ना, इतना वावेला करते हैं, पहले खुद ही गर्दनें काटते हैं लोगों की, अपने लोगों की गर्दनें काटते हैं, अपने लोगों को घरों से निकालते हैं, अपने लोगों को कैद करते हैं, अपने लोगों को हम उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, और उसके ऊपर यानी तावान मांगते हैं, और उससे अपनी जेबें भरते हैं, अपने लोगों को लूटते हैं घसूटते हैं, ये सारा करके, और उसके बाद कहते हैं गैर मुस्लिम तो मार रहे हैं, और गैर मुस्लिम तो, और गैर मुस्लिम अगर कैद करके ले जाए किसी को तो फिर बहुत दुहाइयां देते हैं, फिर बड़े रोते हैं, अरे देखो फलानी जगह पे कैद करके हमारे मुसलमानों को रखा है, तुम खुद क्या करते हो, तुम तो खुद गर्दने काट काट के और फिर उसकी फिल्में बनाते और फिर लगाते कि पूरी दुनिया देखे थे देखो हम कैसे गर्दने काटते, ये हमारा किरदार, इतनी उम्मते मुस्लिमा आज गिर चुकी है, इतना इनके ऊपर जवाल आ गया, ये इनका हाल बिल्कुल, ये आयतें आज 100% उम्मते मुस्लिमा के ऊपर यानी ऐसे इनके ऊपर बिल्कुल फिट आ रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकलमंद आदमी के लिए लाजिम है कि वो अपने जमाने के हालात से वाकिफ रहे, ये नहीं कि आप अलूफ सी रहे बैठी रहे, मुझे क्या पॉलिटिक्स है मुझे क्या इससे, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, आज के हालात क्या है, नहीं बस मैं तो अल्लाह अल्लाह करती, नहीं आप वो पता कैसे चलेगा किधर, जब आप इसलाह करना चाहेंगी अपनी उम्मत की या उसके लिए खड़े होना चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा जब तक आपको बीमारी का ही नहीं पता, आप तो डायग्नोज ही नहीं कर सकते, आपको तो हालात ही नहीं पता क्या हो रहे हैं, आपको क्या पता चलेगा कि दज्जाली वक्त कैसा आ रहा है, आपको क्या पता चलेगा कयामत की कौन सी निशानियां पूरी हो रही हैं, आप अपने वो एक शैल में बंद होकर बस बैठे रहे, हालात से वाकफियत रखिए, क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, कहाँ पे जुल्म हो रहा है, कहाँ पे ज्यादतियां हो रही हैं, तो ये देख लें कि वो ही चीज जो वो कर रहे थे यहूद वो ही आज मुसलमान कर रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया अफतुमिनूना बिबादिल किताबी वतकफुरूना बिबाद, क्या तुम मानते हो किताब के बाज हिस्से को और बाज का इनकार करते हो, पहले तो तुम खुद ही जाके दूसरों के साथ बैठ जाते हो और अपनों का ही खून बहाते हो, उसके बाद तुम्हें अपनों से बड़ी हमदर्दी आ जाती है और उनके लिए उठ खड़े होते हो, तो पहले तुमने दुश्मनों का साथ क्यों दिया, पहले तुमने गैरों का साथ क्यों दिया अपने का खून बहाने के लिए, पहले तुम खुद अपनों का खून बहाने क्यों खड़े हो जाते हो, तुम्हें तो वही मना किया गया था, लेकिन तुम क्या करते हो किताब के बाज हिस्से को तो ईमान लाते हो और बाज को ऊपर इनकार करते हो, ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि ये यहूद की नहीं रविश थी, आज मुसलमानों में घर घर यही फितना, انفرادی زندگی لے لیں یا اجتماعی لے لیں. بعض حصے پر جو ہماری من پسند حصہ ہے کتاب کا اس کے اوپر تو ہم ایمان لاتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, اور بعض کا کفر کرتے ہیں, بعض کا انکار کرتے ہیں. کیا کوئی مسلمان بھی انکار کرتا ہے کتاب کا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں مسلمان انکار کرتا. تو پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا کفر کرتے ہیں؟ کیا یہودی کفر کرتے تھے اپنی تورات کا؟ نہیں, وہ تو یہودی رہ ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ کفر کرتے. کبھی نہیں انہوں نے کہا ہم تورات کے اس حصے کو نہیں مانتے. پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا کفر کرتے ہیں؟ ہاں, کفر کا مطلب ہے احکامات کا انکار کرنا. وہ زبان سے نہیں کہتے تھے کہ ہم انکار کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. نہیں, بس ٹوٹلی اس کو اگنور کرتے تھے, ٹوٹلی اگنور کرتے تھے, عمل ہی نہیں کرتے تھے, ایسے جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے یہ ہمارے تورات میں. ایسے ہم سے یعنی بالکل ہی ایسے نظریں پھیر لیں, جہاں پہ تو اپنا فائدہ نظر آئے, جہاں پہ تو ایزی لگے, جہاں پہ تو کنوینئنس ہو, وہ اس حصے کو تو لے لیا. اور کہا دیکھا قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, دیکھیں یہ. جیسے مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا, ان کے بچیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہیں, ویسے وہ اپنی بچیوں کو منع کرتے تھے کہ حجاب نہیں لو, یہ نہیں لو, کوئی نہیں کرو, لیکن جب ان کی بچیوں نے ان کے سامنے زبان درازی کی تو انہوں نے میرے ساتھ فوراً شکایت کی کہ دیکھیں آپ ان کو بتائیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کی جائے اور ان کے آگے زبان نہ چلائیں. تو میں نے سوچا یہ ان کو یہ حکم اس لیے یاد آیا کیونکہ یہ ان کے اپنے فائدے میں جاتا تھا, لیکن جب بچی نے حجاب لیا تو اللہ کا ہی وہ بھی تو حکم تھا, اس کو وہ منع کر رہے ہیں. تو ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ کتاب کے جو حصے ہمیں پسند ہیں ان کو تو پک کر لیا اپنے لیے, ان کو تو بڑی خوشی سے لیں گے, اور جو ہمیں لگتا ہے, جو ہم ناپسند تو نہیں کہہ سکتے مگر جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کنوینئنٹ نہیں یا ایزی نہیں ہے, یا آج کے زمانے میں یہ ہمیں آؤٹ ڈیٹ لوگ سمجھیں گے ان کی وجہ سے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جن کو ہمیں لگتا ہے یہ حکم آج اگر ہم نے مان لیا نا تو زمانے میں پیچھے رہ جائیں گے, تو اسی کو تو انکار کہتے ہیں. ہم منہ سے چاہے بولیں چاہے نہیں بولیں, یہ انکار ہی ہے کہ جب ہم کتاب کے بعض احکامات کو ہم اپنے لیے ایسے بنا لیں کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. آج ہم کون سے دین کے احکامات کو کرنے کا شوق رکھتے ہیں بتائیں, خود بتائیں. جس میں کوئی رونق میلہ ہے, جس میں کوئی مزہ ہے, جس میں کوئی فن ہو جائے, جس میں کوئی کچھ ہو جائے, فوراً کہتے ہیں اسلام میں بھی تو یہ ہے نا, یا جس میں ہمارا فائدہ ہو رہا, اسلام میں یہ ہے نا, ہمارا تو اسلام بھی یہ کہتا ہے نا. آپ دیکھیں بڑا سے بڑا دنیا دار بھی ہوگا نا, وہ جو کچھ سی دین کی الف بے تک نہیں وہ جانتا, نہ فالو کرتا ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, وہ بھی جب اپنے فائدے کی بات آتی ہے نا تو آپ بتائیں نا ہمارا اسلام بھی تو یہ کہتا ہے نا. نہیں, یہ تو ہمارا اسلام بھی پھر کہتا ہے, دیکھیں یہ تو اسلام میں بھی, وہ باقی سارا ٹائم تمہیں اسلام کبھی نہیں یاد آتا, باقی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لو تو ہر جگہ اسلام ہی کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے, اسلام ہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اسلام ہی کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اس وقت نہیں تمہیں اسلام یاد آتا, اس وقت تم کبھی نہیں کہتا اسلام بھی یہ کہتا, ہمارا اسلام بھی یہ کہتا, تب بہت اسلام کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں یہاں پہ اپنی فائدہ ہو. تو وہ بھی پڑھتے تو سارا ہی تھے مگر ایمان لانا, کتاب کو پڑھنے سے ایمان لانا نہیں ہو جاتا کہ ہم کہیں کہ ہم ساری سارا قرآن پڑھتے ہیں ہمارا سارے پہ ایمان ہے. نہیں, جتنا جتنا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں وہ ایمان لانا ہے, باقی تو صرف آپ زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو انکار کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو مانیں بھی اور کہیں بھی کہ جو ہے نا ہم نے نہیں اب اس کے اوپر عمل کرنا, کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مان جاتا ہے انسان تو کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے, اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو عمل میں وہ اس کو نہیں مانتے تھے, عملی طور پہ کفر کرتے تھے, اس کو عملی کفر کہہ سکتے ہیں آپ, اور اسی کو یہاں پہ تکفرون بعباد کہا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا उसका कुरान पे ईमान नहीं है। कुरान की कोई चीज है जो अल्लाह ताला ने फरमा दी ये नहीं करना, अब आपने अगर अपने ऊपर कह दिया ना कि नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, क्योंकि देखिए इसके बगैर आजकल कहाँ जॉब मिलेगी, इसके बगैर कहाँ गुजारा होगा, इसके बगैर तो फिर देखिए तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये समझ लें आपने कुरान पे साथ कुफर कर लिया। रब्बी ना, ये जुमला कहते हुए भी ना डर लगता है कि अल्लाह आज हम देखें, एक बात जहन में रखिएगा, ये उनकी बात नहीं हो रही, कुछ तो हमारे मुसलमान ऐसे हैं ना जो कि बिल्कुल उनको तो कुछ पता ही नहीं है, कोई शरीयत का कुछ अलिफ बे नहीं पता, ना नमाज के होश, ना रोजे की खबर, ना कोई अल्लाह तौबा, ना कुछ अल्लाह का जिक्र, उनका तो बिल्कुल ही हाल गया गुजरा है ना। ये उनकी बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो अपने आप को शरीयत के बड़े अमल करने वाले समझते हैं, जो खुद को बड़ा दीनदार समझते हैं, इसीलिए तो वो ईमान रखते हैं ना बाज हिस्से पे किताब के, अमल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने कह दिया कि हम तो बिल्कुल सेकुलर हो गए, हम तो बिल्कुल ही दीन से निकले हुए हो गए, हमें कोई नहीं, नहीं ये दीनदार है ही ना। अफा तो उमीनूना भी बात कर, तुम ईमान लाते हो बाज किताब के पास हिस्से पे, यानी कुछ पे अमल करते भी हैं, पूरे निकल नहीं गए वे, बल्कि अमल भी करते हैं, मगर कैसा अमल है, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, पिक एंड, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये अगला ये कर लो, हाँ ये आसान है, ये कर लो, अच्छा ये छोड़ दो, पिक एंड चूज करते हैं। आज 99% मुसलमान क्या इसी में शामिल नहीं है? डर इस बात से लग रहा है कि जो बिल्कुल सब कुछ ही छोड़ चुके हैं उनकी तो बात ही अलग है ना, ये तो वो हैं जो अपने आप को दीनदार कहलाते हैं, क्योंकि वो नमाज पढ़ते होंगे, वो रोजा रखते होंगे, या जो ईमान रखते हैं बाज के किताब के, बाज बाज चीजों को करते भी हैं, और कहते हैं हम देखें अमल तो कर रहे हैं ना, ये देखें हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। जैसे बाज लोग नमाज रोजे में बहुत पाबंद है, बहुत पाबंद है, कुरान भी सुबह उठ के बड़े शौक से पढ़ते हैं, लेकिन बाकी जिंदगी में क्या करते हैं, इसमें इस्लाम का क्या ताल्लुक, ये तो हमें अपनी मर्जी से गुजारनी है, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको करेंगे, जिसको नहीं अच्छा समझेंगे, आउटडेटेड समझेंगे उसको नहीं करेंगे ना। तो आप देख लें ऐसे लोगों की अक्सरियत है हमारे अंदर, हम भी उन्हीं में से हैं, हमारा जो दिल चाहता है हम करते हैं, जो दिल चाहता छोड़ देते, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला ने तो फरमाया ना कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ्फा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, आधे आधे नहीं आ सकते, आधे नहीं, अगर आधे आओगे याद रखना तो क्या होगा, फरमा जजाओ मैं यफअलु ज़ालिका मिनकुम लखिज़्युन फिल हयाति दुनिया, जो तुम में से ऐसा करेगा याद रखो उसकी उसकी सजा ये है, रुसवाई है दुनिया की जिंदगी की, जिल्लत है, शेम है उनके लिए दुनिया की जिंदगी की, ह्यूमिलिएशन है। हालांकि ये करते हैं बाज हिस्से की किताबें, ये देखिए मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, मत ये सोचेंगे ये तो उनकी बात हो रही है, वो तो छोड़ के रहे बैठे हैं, उनको तो कोई दीन का पता ही नहीं है, वो तो ऐसे करती हैं, वो तो फलान नहीं करती, उनकी नहीं बात हो रही, ये वो हैं जो बाज हिस्से पे अमल करते हैं, उनके लिए है रुसवाई दुनिया की, इसलिए कि एक तो वो है ना जो काफिर है, जो कुछ भी नहीं करता, कहता मैंने मानना ही नहीं, एक वो है जो कहता मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं करती भी हूँ, करती हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, और मैं सारी सब चीजें मानती हूँ, फिर भी उसके बाद उसके अंदर इतनी जुर्रत हो कि वो जो दिल चाहे करे और जहां पे दिल चाहे छोड़े, जहां पे दिल चाहे अमल करे और जिस हुक्म को दिल चाहे तोड़े, तो अल्लाह ताला को उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा आता कि उसके लिए रुसवाई है, रुसवाई है। आज देखे मुसलमानों का दुनिया में जो हाल है ना इज्तमाही तौर पर, वो क्या हाल हुआ पड़ा है, वो यही हाल नहीं है क्या कि दुनिया में आज मुसलमान मुस्लिम पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ी दुनिया में पॉपुलेशन जो है ना मुसलमानों की है, हर फिफ्थ पर्सन मुस्लिम है, तब भी ये हाल है कि देखें अल्लाह माफ करे कि आज बाज लोग अपने आप को मुसलमान कहलाने में शर्म महसूस करते, आज मुसलमान ममालिक अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन आज भी लोग दूसरों के आगे, गैर मुस्लिमों के आगे हाथ उठाते हैं, हाथ हाथ फैलाते हैं। आज ये हाल है कि मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन दुनिया जहान में जलील है। किसी जगह देख लो, मुसलमान का नाम बदनाम है, कोई इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहता, कोई इसको अच्छा नहीं समझता। कहीं टेररिस्ट कहते हैं, कहीं एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, कहीं फनेटिक कहते हैं, कहीं फलां कहते हैं, कितना कुछ कहते हैं। सोचे जिनके पास तो इतनी तेल के जखायर जिनके पास हैं, और जिनका ये हाल है कि जो कहते हैं कि हम ही हैं जो हक पे हैं, हमारा दीन है जो हक वाला दीन है, उसके बाद ये हाल है कि उनकी रुसवाई है सारी दुनिया में। उनकी तो रुसवाई नहीं होनी चाहिए थी, इनको तो सबसे बुलंद और मुआज्जज होना चाहिए था, लेकिन क्यों आज ये रुसवा है ये अल्लाह तआला ने बता दिया, वजह बता दी। फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका, जो करता है ये क्या, ये तो उमिनुना बिबाद किताब का तफ़सीर होना भी पास, जो ये करता है कि किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान रखता है और बाज़ को छोड़ देता है, उसका ये हाल है। इसीलिए वो शेर है ना, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। वो जो हमारे असलाफ थे ना, वो ऑनरेबल दुनिया में किस लिए थे, मुसलमान होने की वजह से, और तुम ख्वार हो जलील हो दुनिया में किस लिए, तारिके कुरान कुरान को छोड़ने वाले हो गए, इसीलिए तुम जलील हुए। उनका भी यही प्रॉब्लम था और आज भी यही प्रॉब्लम, हर तबके में देख लो, एक कोई ना कोई एक गुनाह कबीरा है जो हमने अपने पर हलाल किया है, चाहे वो सूद की फॉर्म में हो, चाहे वो रिश्वत की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी और फॉर्म में हो, चाहे वो हराम कमाइयों की फॉर्म में हो, चाहे वो हराम जिंदगी बसर करने की फॉर्म में हो, चाहे वो झूठ और गीबत की फॉर्म में हो, चाहे वो और किसी तरह की भी फॉर्म में हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई एक गुनाह कबीरा है जो हमने अपने लिए हलाल किया है। और यौम अल-क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बात खत्म हो जाएगी, क़यामत के दिन वो लौटाए जाएंगे शदीद तरीन अज़ाब की तरफ, यानी अज़ाब से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसमें लौटा दिए जाएंगे, फिर निकलने की कोशिश करेंगे फिर लौटा दिए जाएंगे। और दूसरा माना ये भी हो सकता है कि दुनिया में भी देखो रसवाई थी, वहां पे भी जाके आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात है, वहां पे भी रसवाई, दुनिया में भी जलील होते गए, अब सोचा क्यामत के दिन तो हमें बड़ा ऑनर मिलेगा, वहां पे भी जाके शदीद अजाब। क्यों तुमने ये काम किया है, तुम्हें कौन सा राइट है कि तुम पिक एंड चूज करो अल्लाह की किताब में, मानना है तो सारी को मानो, टेक इट और लीव इट, ऐसे मानो कि सारी जिंदगी के ऊपर ये किताब लागू हो। अब हम भी अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं कुरान के सारे अहकामात को मानती हूँ या कुछ को नहीं मानती, वो कौन कौन सी बातें हैं कि जो मुझे पता है अल्लाह का हुक्म है फिर भी मैं नहीं मानती, फिर भी मैं छोड़ देती हूँ, कुरान को बदल देते हैं और खुद नहीं बदलना चाहते ना, खुद चाहते हैं कि मैं वही जिंदगी गुजारूं, कुरान बदल जाए, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन हो जाए। तो याद रखो वो अल्लाह बिगाफिलन अम्मा तअमलून, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो, तुम्हारे ये जो लबाते हैं नकाबे हैं और अबाए हैं और जो तुम्हारे अल्लाह तोबा और इस्तगफार करने की और झुरझुरियाँ लेना और हमें अल्लाह से बड़ा डर लगता है, और ये जो तुम्हारी दाढ़ियाँ हैं और जो तुम्हारी शलवारें मर्दों की जो टखनों से ऊपर हैं, इनसे अल्लाह धोखा नहीं खाता, याद रखना। और जो तुम्हारे ये जुबानी दावे हैं ना, और यहाँ पे क्लासें ले लेना, वहां पे क्लासें ले लेना, इधर पढ़ा देना, मैंने अल्लाह दिल देखता है, वो धोखा नहीं खाता। ये इंसानों को धोखा दे सकते हो कि वो कहें हाँ ये बड़ी दीनदार बड़ी नेक बड़ी ऐसी, ये दुनिया वालों को तुम चकमा दे सकते हो, अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह गाफिल नहीं है। याद रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जुल्म को जालिम को मोहलत देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं, यानी मोहलत अल्लाह की तरफ से आती है, तुम समझ लो अल्लाह को पता ही नहीं चला, मैं जो मर्जी मतलब ऊपर ऊपर से कुछ दिखाऊं और अंदर से कुछ और बनी रहूं और बाज किताब के हिस्से को मानूं और बाज को गोल कर जाऊं, अल्लाह तो तुम्हें वो चुका रहा, अनवेयर ना समझो उसको। अल्लाह अकबर, ना जाओ उसके तहम्मुल पर कि बेढब है गरिफ्त उसकी, डर उसकी देर गिरी से कि साफ है इंतकाम उसका, उसके तहम्मुल पे ना जाएं कि वो उसका तहम्मुल आप देख के ये सोचेंगे पता नहीं हमें छुट्टी मिल गई है, नहीं वो देर करता है लेकिन अंधेर नहीं है वहां पे, उसका इंतकाम जो होता है ना फिर बड़ा सख्त होता है। उलाइक अल्लज़ीन अश्तरौल हयात अद्दुनिया बिल आखिरा, यही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया आखरत के बदले में। मैंने आपको उस वक्त कहा था इश्तरा का हम मतलब देखेंगे। देखें पहले जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, पैसे तो होते नहीं थे, करेंसी नहीं होती थी, एक चीज लेते थे और दूसरी लेते थे। मसलन किसी ने कपड़ा बुनाया तो वो कपड़ा दे देगा और दूसरे से गंदम ले लेगा, किसी के ने जूता सिया तो वो जूता दे देगा और दूसरे के से कोई तीर कमान ले लेगा। तो ये खरीदो फरोख्त इस तरह हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक चीज लेंगे और एक चीज देंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुनिया की जिंदगी ले ली है और आखरत को दे दिया। और जिसने अपनी आखरत ही दे दी उसका आखरत में जाके कुछ मिलेगा नहीं, उसने तो बेच दी है आखरत, बेच दी, वो तो हमारी रही नहीं। अब आखरत कुछ नहीं रही हमारी, क्योंकि हमने तो दुनिया के फायदों को तरजीह दी ना, यहाँ पे ना नुकसान हो जाए। इसीलिए तो तकफुरुना बिबाद करते हैं ना, यहाँ पे मुझे किसी की बातें ना सुननी पड़े, यहाँ पे मुझे किसी की नजरों में ना गिरना पड़े, यहाँ पे मैं जच जाऊं लोगों के सामने, लोग मुझे पसंद करें, लोगों में मैं अपडेटेड रहूं, लोगों में मैं ये रहूं, लोगों में मैं ऊंची रहूं, लोगों के मतलब की मैं बात करूं, लोगों की हाँ में हाँ मिलाऊं, बस ये सारे मुझे फायदे मिल जाएं, मेरी जॉब भी चले, मेरे ये भी चले, दुनिया के फायदे भी मैं समेटूं, उसके लिए भले जाए आखरत जाए तो जाए, मुझे क्या। तो ठीक है फिर दुनिया ले लो और आखरत बेच दो। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया ना, क्या तुम आखरत की नियमतों को छोड़ के दुनिया की जिंदगी पर खुश होके बैठ गए। दुनिया की जिंदगी तो आखरत के मुकाबले में बहुत ही कम, दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखरत के मुकाबले में बहुत ही कम है। दुनिया की जिंदगी ही कम है तो इसके फायदे तो कम होंगे ही ना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है ना, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्सिम लना, वो वाली जो दुआ है उसके अंदर आता है, अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया कबर हम्मिना, ए अल्लाह इस दुनिया को ही मेरा सबसे बड़ा गम ना बना देना, इस दुनिया को मेरी सबसे बड़ी फिक्र ना बना देना, कि मैं इसी के पीछे घुलती रहूं, सारा वक्त मेरी परेशानी बस ये दुनिया ही रहे, कि बस मैं इसके पीछे ही मरी चली जा रही हूँ और इसी के पीछे पागल हुई चली जा रही हूँ और इसके पीछे मेरी फिक्रें खत्म ही नहीं होके दे रही, अल्लाह इसको मेरा सबसे बड़ा गम ना बना दे। अल्लाह अकबर। तो इंसान ये बेचता और खरीदता कैसे है, कैसे ये सौदा होता है, जब दुनिया के फायदे की खातिर आप अपनी आखरत को गिव अप कर देते हैं, अल्लाह के हुक्म को छोड़ देते हैं कि मेरा दुनिया का कहीं फायदा चला ना जाए मुझसे, मुझे कहीं दुनिया का नुकसान ना हो जाए, उसके डर से मैं तकफूर होना भी बात करती। अल्लाह भले आखरत चली जाए दुनिया ना जाए, ऐसों के लिए फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, ऐसों के लिए अजाब नहीं हल्का किया जाएगा, वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे। दुनिया में तो आग जो लगी होती है कभी ना कभी कम हो जाती है उसकी हिद्दत, मगर ये तो अजाब कम नहीं होगा, सख्त से सख्त होता जाएगा और मदद भी नहीं आएगी कहीं से। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें पूरे दीन पे चला दे, अल्लाह ये आधे आधे पे जो हम चल रहे हैं ना, जो अपनी मर्जी का करते हैं और मर्जी नहीं होती तो छोड़ देते हैं, अल्लाह हमें इनमें ना शामिल करना, अल्लाह हमें दुनिया की रुसवाई से और आखरत के अजामों से बचा लेना। बहुत ही सख्त शदीद आयत है ये, और चूंकि हमारे ऊपर पूरी तरह फिट होती है इसलिए बहुत ज्यादा इस आईने में खुद को देखने की जरूरत है, कहाँ कहाँ कमियां हो रही, कहाँ कहाँ कुफर कर रही और कहाँ ईमान रखती हूँ, कौन सी चीजों को लेती हूँ कौन सी को छोड़ती हूँ। आप कुरान पढ़ते जा रहे हैं ना तो देख लें कि मेरे क्या क्या रवैये हैं, कौन सी चीजों को मैं सोचती हूँ कि मैंने सुना है, मैंने सुन लिया है, समय है ना आता ना, कौन सी पे करती हूँ और कौन सी पे कहती हूँ, समय ना वो आसा ही ना, खुद ही दिल में प्रोग्राम बना लेती हूँ कि मैंने सुन तो लिया ना, मैंने मानना नहीं है, अब पहले से ही मैं ठान लेती हूँ, अच्छा ये वाला लेक्चर है ना, ये वाली अब बातें आ रही हैं ना, ये वाली आयतें आ रही हैं, ठीक है मैं सुन लूंगी, कि मैंने मानना नहीं है, किन पे मैंने पहले से ही नियत की थी। दुआ करें दुआ करें, हम सब दुआ करें अपने लिए, ला हम सबको पूरी की पूरी किताब पे चलने वाला बना दे। यहाँ तक तिलावत सुनिए।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
آگے دیکھتے ہیں آیات، آیت نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. تو کیا ہوا؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے ہم نے اس کے بعد رسول. اس کے بعد کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کون رسول بھیجے؟ آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہی ان کے بھائی رسول آئے تھے، ہارون علیہ السلام، پھر یوشع علیہ السلام، پھر الیاس علیہ السلام، پھر یسع، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے آئے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام ان میں جو آخری تھے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، نبوت شفٹ ہو گئی بنی اسماعیل کی طرف، اور پھر وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت سارے رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف. سوچیں جتنے زیادہ رسول آئے ہیں اتنا زیادہ ان کا ایک بنتا ہے نا حق کہ یہ اس کے بعد ہدایت پر آ جاتے. اور وآتینا عیسیٰ ابن مریم بالبینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو کھلی کھلی روشن نشانیاں دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیا روشن نشانیاں تھیں؟ جو معجزات انہوں نے دکھائے تھے. ان کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تھا نا کہ مٹی کے پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے وہ نہیں لگتا تھا، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے. یہ نشانیاں تھیں، یہ معجزات ملے تھے ان کو. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی روح القدس سے. کس کی؟ کی موسیٰ علیہ السلام کی. اور روح القدس کون نے؟ جبرائیل علیہ السلام. ان کو دیکھیں سورہ اس میں سورہ قدر میں بھی ان کو کہا گیا نا کہ روح تنزل الملائکہ تو والروح فیہا بإذن ربہم، تو اس میں بھی ان کو روح کہا گیا. تو کئی جگہ پہ قرآن پاک میں ان کو روح کہا گیا. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان جو شاعر تھے، وہ شاعری کرتے تھے، مشرکین کی جواب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد روح القدس سے فرما. اسے پتا چلتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام روح القدس ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان سے بھی فرماتے ہیں، حسان تم ان مشرکین کی حج کرو، یعنی ان کا جواب دو، جو جیسے بھی شعر پڑھتے ہیں تو اس کا جواب. جبرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہیں، جبرائیل علیہ السلام روح القدس ہے. تو خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے تائید ہوئی روح القدس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو حضرت مریم کے کپڑے کے اندر پھونک ماری تھی عیسیٰ علیہ جبرائیل علیہ السلام نے، تو حضرت مریم کا حمل ٹھہرا تھا. اور اس کے علاوہ بھی جب عیسیٰ علیہ السلام یہود کے اندر تھے تو یہود میں اتنے زیادہ ان کی مخالفت تھی، تو جبرائیل علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ ان دا اینڈ جس وقت تو بالکل انہوں نے یہ سوچ لیا کہ سولی پہ چڑھا دیں گے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اٹھا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو تمام نبیوں کی مدد فرمائی، ان کی طرف آتے رہے جبرائیل علیہ السلام، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ خاص اشارہ ان کی طرف کیوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تائید کی کہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو کہ یہ تو بس شعبدے بازیاں کرتے ہیں اور یہ کوئی معجزہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ تو شیطان ان کو سکھاتا ہے اور شیطان کی مدد ان کو حاصل ہے، تو نہیں، یہ تائید جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے، کیونکہ یہود نہیں نا مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. افکلما جاءکم رسول، کیا بھلا جب کبھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول، یعنی تمہارا ڈھنگ کیا رہا ہے، تمہارا طریقہ کیا رہا ہے ہمیشہ، کہ جب کبھی تمہارے پاس، وین ایور، کلما کا مطلب کیا، وین ایور، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس لایا، کیا لایا، بما لا تهوى انفسكم، اس کو جس کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، جو تمہیں نہیں دل چاہتا تھا، کہ یہ تمہاری خواہشات کے خلاف تھے، ایسے احکامات لایا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تمہیں جو باتیں اچھی نہیں لگتی تھی نا، جب رسول جب وہ حکم لے کر آئے، وہ باتیں تمہیں بتائیں جو تمہیں پسند نہیں آئیں. اب دین بھی اللہ معاف کرے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بس دین ہماری پسند کا ہو، ہماری پسند کے تابع ہو، جیسے ہم چاہتے ہیں بس ویسے ہی احکامات دے، اور اس کے علاوہ جس میں جو ہمیں نہ پسند ہو نا، جس میں ہم ایڈجسٹ نہ کر سکے، ویسے نہ ہو، تو ہم ایڈجسٹیبل ہونے چاہیے، جو ہماری پرسنالٹی سے میچ کرتے ہو ویسے حکم ہونے چاہیے، تو وہ تو پھر مان نہیں لیتے، لیکن جو اس کے خلاف تھے، تمہاری پسند کے خلاف، تم نے تکبر کیا. تکبر میں انسان کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے نا. پھر جب انسان اپنی بات کو بڑا سمجھ لیتا ہے کہ میری بات بڑی ہے، اب یہ جو مرضی کہتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے پھر وہ انکار ہی کرے گا. ففریقن کذبتم، پھر ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے. کس گروہ کو؟ جب بھی کوئی رسول آیا تو تم نے ان کے ایک گروہ کو جھٹلایا. بہت سارے نبی آئے تھے نا ان کے پاس، میں نے آپ کو بتایا، تو نبیوں کے ایک گروہ کو تو تم نے ویسے ہی کہہ دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ان کو، کفر بھی کیا اور تکذیب بھی کی، جھٹلایا بھی ان کو، باقاعدہ ان کی مخالفت کی. وقت فریقن تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، اتنی حد تک آگے بڑھ گئے کہ جب تم ان کو چپ نہیں کرا سکے ان نبیوں کو، تو تم نے آگے سے کیا کیا، ان کو قتل ہی کر دیا، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے، ان کو ہی قتل کر دیا. دیکھ لیں، دین انسان کو تبھی تک اچھا لگتا ہے جس وقت تک وہ اپنی مرضی کی باتیں آپ کو بتاتا ہے. ہاں، جب انسان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ دین کے ہی خلاف کھڑا ہو جاتا اور باتیں بنانے لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے، کہتے تھے بس آپ یہ باتیں نہ ہمیں کہیں تو پھر ہم مان لیں گے آپ کے دین کو. آج بھی خواہشات نفس کے خلاف کا دین ہمیں نہیں دینا، بس جو ہماری خواہش کے مطابق ہے بس وہی ہے. پھر ہم کیسے جھٹلاتے ہیں، پھر ہم دلیلیں لے کر آتے ہیں یہاں سے وہاں سے، فیکٹس اینڈ فگر، نہیں اس زمانے میں ایسے تھا، یہ تھا، وہ تھا، کر کے اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے. تو انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور یہاں تک کہ اتنی جرت کر دی، قتل تک کر دیا. کس کو قتل کیا تھا؟ کئی نبیوں کے تو ہمیں نام نہیں پتا، مگر جن کا ہمیں پتا ہے، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے طور پر تو یہ قتل کر چکے ہیں، اپنے طور پہ تو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنے طور پہ تو یہی سوچ لیا کہ ہم نے قتل کر دیا. وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہنے لگے، یہود کہنے لگے، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں. یعنی جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتاتے، دین کی دعوت دیتے، قرآن پر، کہتے ہمارے دل تو بھائی غلاف میں ہیں. یعنی ایک طرح سے طنز بھی کر دیا، اور حقارت بھی ہے اس کے اندر، اور ایک مذاق بھی ہے. یعنی کیا مطلب ہوتا تھا کہ بھائی جاؤ جاؤ جا کے کسی اور کو یہ باتیں بتاؤ، جو کوئی سیدھا سادہ بدھو سا ہو اس کو بتاؤ، ہمارے دلوں پہ تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، ہمارے دل نا بڑے محفوظ ہیں، سیکیور ہیں، ان پہ نہیں تمہاری باتوں کے، تمہارے لیکچروں کے اثر ہوتے. نہیں نا، اس طرح سے جو تنزیہ سی ایک بات کرنا، اور اس طرح حقارت سے بات کرنا، یہ ہوتا تھا. قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں بھائی، नो मैटर वॉट यू से, हमें फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा इसका माना क्या है, कहते थे हमारा दिल इल्म के खजाने हैं, हमारे दिल तो भरे पड़े इल्म से, हमारे पास तो खुद तौरात के इतने इल्म हैं, हमें तुम्हारे इल्म की क्या जरूरत है, और जाओ किसी और को बताओ जाके, ये हमें ये नए नए इन चीजों की इनकी हमें जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी हमारे पास तो खुद इतना इल्म है भाई, हमें कहा ये तुम्हारे चाहिए। बल बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह का गजब देखें फिर आया इनके ऊपर, कि ऐसा नहीं है कि इनके दिल बड़ी हिफाजत में है या इनके दिल इल्म के खजाने हैं। लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह की लानत है इन पे इनके कुफर की वजह से, ये जो इनकार करते हैं, ये जो कहते हैं हमने नहीं मानना नहीं मानना, इसकी वजह से अल्लाह ताला की लानत इनके ऊपर। अगर लानत क्या, खैर से महरूम कर देना, रहमत से महरूम कर देना, और उसके अंदर क्या आ जाता है रहमत से महरूम करने में, कि यानी अब कोई भी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत तो ईमान है ना, कि किसी को हिदायत मिल जाए, किसी को दीन की समझ आ जाए, अब यानी ये उससे महरूम होगा। फ़क़लीलम मा यूमिनून, बहुत ही थोड़े हैं या बहुत थोड़ा चांस है कि जो ये ईमान लाएंगे। ये इतनी बदनीयती वाले और हसद वाले और तकबर वाले हैं ना, इनके दिलों पर जिसको कहते हैं ना मोहर लग गई, अब तो चांस ही समझने के बहुत कम रह गया कि ये ईमान लेकर आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह ने लानत कर दिया। अब ये समझ आ रही ना आपको, जो इस तरह से करता है, और अल्लाह की लानत का मतलब ही ये होता है ना कि अब ये अल्लाह की रहमत जो है ना इनको नहीं अब पहुंचनी। हालांकि हम में से शायद कम ही लोग अल्लाह की रहमत, दीन को अल्लाह की रहमत समझते हैं, तो पैसों को या और चीजों को, लग्जरीज को अल्लाह की रहमत समझते होंगे, लेकिन दीन को तो कम ही लोग हैं जो समझें कि ये भी कोई अल्लाह की रहमत है। इसीलिए से दूर होने को कोई महरूमी नहीं समझते वो, दीन से दूर होने को अपने लिए कोई ऐसा नहीं समझते कि हाय हमें कितनी बड़ी खैर से हम दूर हो गए, अगर इनको ये रहमत लगता होता ना तो फिर ये इस खैर से दूर होने को कभी अफोर्ड ना करते, इसके लिए भागते, हम जल्दी से ले लें इस रहमत, कौन नहीं अपने लिए रहमत लेना चाहता। रसूल सल्लम ने तो फरमाया ना, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है फिर उसको दीन की समझ अता फरमाता है, ये अल्लाह की तरफ से भलाई होती है, रहमत होती है कि उसको दीन दे दे। तो इनको तो लानत कर दी ना, तो अब ये बहुत कम चांस है, या इनमें से बहुत कम है जो ईमान लाए। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब आ गई इनके पास किताब इनके रब के अल्लाह के पास से, कौन सी किताब, यहाँ पे किस किताब का जिक्र हो रहा है, कुरान, ये किताब आ गई, मुसद्दिकुन लिमा माहुम, जो तस्दीक करती है जो इनके पास है, जो इनके पास क्या है, तौरात। तो कुरान वेरीफाई करता है ना, पहले भी हमने ये आयत पढ़ी थी इसी तरह, कि कुरान वेरीफाई करता है तौरात को, कि तौरात अल्लाह की तरफ से, ये नहीं वेरीफाई कर रहा कि जो भी इसमें अब चेंजेस हो गई हैं बस वो ठीक है, वो भी अल्लाह की तरफ से, नहीं, बल्कि ये तस्दीक करता है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, और जो उस वक्त नाजिल हुआ था अल्लाह की तरफ से उसको वेरीफाई करता है। अब आप कुरान के जरिए चेक कर सकते हैं कि जो जो कुरान में बातें हैं अगर वो ही वैसी तौरात में है तो वो तो अल्लाह की तरफ से है, बाकी जो कोई कुरान के खिलाफ बात जा रही है उसका मतलब वो अल्लाह की तरफ से नहीं, उन्होंने खुद ही चेंजेस किए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की बात में कॉन्ट्रोडिक्शन थोड़ी हो सकती है। ये तो तस्दीक करता है, इसको एंडोर्स करता है कि वो ठीक है, वो ये वाली बातें, कि वाकई आज भी आप इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अला अल्लज़ीना कफरु, और इससे पहले तो ये फतह मांगा करते थे उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कुफर किया। पहले क्या होता था, इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, ये यहूद कबीले जो थे ना, ये इससे पहले दुआएं करते थे, इतनी दुआएं करते थे, या अल्लाह आखिरी नबी को भेज दे। क्यों? इसलिए कि जब ये काफरों के साथ इनका मुकाबला होता था ना, ये औस और खज़रज सारे काफिर ही थे, यानी कभी इनके साथ अन बन को इधर उधर हो जाती थी, तो फिर कहते थे देखो हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि एक आखिरी नबी आने वाला है, जब वो आखिरी नबी आ गया ना हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे, और फिर तुम देखना कि जब हम उसके साथ मिल के तुम्हारे साथ लड़ेंगे ना तो तुम्हें हम फिर शिकस्त दे देंगे। और देखिए मज़े की बात, एक बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पे, वो ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में होते थे ना, तो अभी ये मदीना वाले कोई भी नहीं, उनको वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। अब हज का जब मौसम आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके दावत दिया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले दावत देने के लिए, तो आपने उकबा की वादी में खजरज के 6 अफराद को बैठे देखा, उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, तो जब दावत दी तो सीरत की किताबों में आता है कि वो उन छह लोगों ने ना कनखियों से एक दूसरे को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा करता है ना। क्या उन्होंने सोचा कि ओ ये तो वही नबी है लगता है जिसके बारे में यहूदी हमें कहा करते थे कि एक नबी आना है। ठीक है, ये लोग मदीना से आए थे ना, तो इनको तो पता था, वो यहूदी हर वक्त तो इनको ये बातें कहा करते थे, धमकियां देते थे, तो इनको पता था एक नबी ने आना है। तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि वो यहूदी हमें जो धमकियां देते थे कि हम उनके साथ मिल के तुम्हारा मुकाबला करें, तो हम क्यों ना हम ही पहले सबसे इस नबी के ऊपर ईमान ले आए, क्योंकि इनको खुद तो नहीं कोई पता था कि एक नबी ने आना है, इनको तो इन यहूदियों से पता चला था। तो ये भी एक देखा ब्लेसिंग हो गई, वो यहूदी तो ईमान लाए नहीं लेकिन सुभान अल्लाह ये ईमान ले आए। और फिर आगे देखें इनके जरिए कितने लोग मदीना में ईमान लेकर आए, और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत हुई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की, फिर इसके स्टार्ट करने वाले तो यही थे ना, इन्हीं के उसके ऊपर की ना फिर, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेंगे और सब ये सारा सीरत में है। खैर एनी हाउ, बात कहने की ये है कि देखें ये यहूदी उस वक्त ये दुआएं करा करते थे। अब इसी नबी के लिए तुम दुआएं करते हो थे, और फलम्मा जाआ हूँ, फिर जब आ गया इनके पास, मा आरफू कफरू बिही, जो उन्होंने पहचान लिया फिर उन्होंने कुफर किया साथ, किसके साथ, रसूल के, यानी तुमने पहचान भी लिया इस रसूल को फिर भी तुमने इनकार कर दिया। फलानतुल्लाह अलल काफिरीन, तो अब इस इनकार के ऊपर दोबारा फरमाया अल्लाह की तरफ से लानत है ऐसे काफिरों। काफिरों से मुराद यहाँ पे कौन है, यहूद, यहूद मुराद है। बिसमा, कितना बुरा है, इश्तरौ बिही, जो बेच डाला उन्होंने बदले इसके, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, कितना बुरा है, किस चीज के बदले इन्होंने अपने नफ्सों को बेच डाला, अन यकफुरू, कि उन्होंने कुफर किया, किस चीज के साथ कुफर किया, बिमा अनजलल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी ये कुरान या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया इन्होंने, तो इन इस इनकार के लिए इनके बदले में इन्होंने अपनी जानें दे दी और ये कुफर ले लिया। मैंने बताया ना इश्तरू, जब भी आएगा आप गिव एंड टेक का मसला को मतलब को समझे, क्या दिया इन्होंने, किसके बदले क्या बेचा, बेच दिया किसको, अपनी जानों को, यानी अब आग के लिए अपनी जानें दे दी इन्होंने कि हमेशा की आग खरीद ली इन्होंने, जहन्नुम, और लिया क्या उसके बदले, इस कुफर को ले लिया। और ये कुफर भी कैसा, बगियन, जिद की वजह से, हालांकि मा अराफू, उन्होंने पहचान लिया था, जो उन्होंने ये पहचान लिया था कि ये सच है, लेकिन बस जिद के आए, ये बनी इस्माइल से क्यों आ गए, ये तो उम्मी लोग थे, हम इनको कहते थे कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है, इल्म वाले तो हम ही हैं और पढ़े लिखे तो हम ही थे, हम इल्म वाले भी, किताब वाले भी, हमारे पास रसूल भी है। मैंने आपको बताया ना, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे, हमारे पास, हमारे अंदर नबी आए हैं और ये पैगम्बर हमारे अंदर आए हैं, तो ये तो खुद को क्या बहुत ऊंचे पेडिस्टल पे बिठाते थे, कहाँ ये सोच रहे हैं कि अच्छा अब इनके अंदर नबी आ गए एक दूसरी नस्ल में। तो बगयन अन युनज्जिल अल्लाहु मिन फदली अला मन यशाउ मिन इबादी, इस बात पे जिद इनको हुई है कि अल्लाह अपने अपने फजल से ऊपर जिसके वो चाहता है अपने बंदों में से वो फजल कर दे, ये चाहते हैं कि ये इनकी इनके अंदर नबी आता, जबकि अल्लाह ताला अपने फजल से जिस बंदे के ऊपर चाहे जो भी नाजिल करे, जिसको चाहे रसूल चुन ले, अल्लाह ताला अपना कलाम जिसको भी दे। इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तासुब है ना, इनका तासुब क्या होता है, प्रेजिडिस होना, कि बस जो हम है ना हम बड़ी चीज है, हमारे बाहर से नहीं कोई। फबाउ बिगदबिन अला गदब, तो वो लौटे गजब के ऊपर गजब के साथ, अल्लाह का इतना गुस्सा है, रेज है इनके ऊपर, इन्होंने भी कुफर पे कुफर किया ना, तो अल्लाह ताला ने भी गजब के ऊपर गजब। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार इनको कितना महंगा पड़ा, दुनिया की रुसवाई, जिल्लत। और फिर जब ये बाद में तो हिस्ट्री के अंदर जो सीरत की आप और पढ़े, तो जिला वतनी इनको हो गई थी, मदीना से भी इनको निकाल दिया गया था, तो अल्लाह ताला का गजब तो इनको दुनिया में भी इनको भुगतना पड़ा, आखरत में तो है ही, वलिल काफिरीन अज़ाबु मुहीन, काफरों के लिए अजाब है, रुसवा करने वाला, तौहीन वाला, इमिलिएशन वाला। तो इनको अब यहाँ पे क्या कहा गया, बनी इसराइल नहीं कहा गया यहाँ पे, इनको काफिर कहा गया, क्योंकि इन्होंने इनकार किया। और फिर देखिए बहाने कितने करते हैं, इदा कीला लहुम आमिनु, जब इनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, इस पे ईमान ले आओ, यानी इस नबी को मान जाओ, कुरान को मान जाओ, अल्लाह की वही को, बिमा अनज़लल्लाह, जो साथ उसके जो नाजिल किया अल्लाह ने, یعنی قرآن کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لو، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو قرآن کو ماننا کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے قرآن کو مان لینا. قالو، تو وہ کہتی ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نؤمنو بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائے ہیں اس کے اوپر جو ہم پہ نازل ہوا. بھائی ہم تو ایمان والے آلریڈی ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پر آیا. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کافر ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم ایمان سے محروم تھوڑا ہی ہیں، مگر ہم اس پہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو قرآن ہے یا تورات کے علاوہ ہے اس کے ساتھ، وہ قرآن ہی ہے نا تورات کے علاوہ، اس سے ہم انکار کرتے ہیں اور وہ کفر کرتے ہیں، یعنی اس پہ نہیں ہم نے ایمان لانا. نو تھینکس، ہم تو پہلے سے کمیٹڈ ہیں بھائی، ہم نے تو کمٹمنٹ کی بھی ہے پہلے اپنی اس کی جو ہمارے پاس پیغام آیا، لہٰذا ہم تو نہیں بھائی یہ اور اپنے اوپر لے سکتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وَهُوَ، اور یہ ہوا سے مراد کیا ہے؟ قرآن. حالانکہ یہ قرآن تو حق ہے، یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی، یہ بات پہلے بھی گزر گئی ہے. قل، کہہ دیجئے، اب مسلمانوں کو جواب سکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ یہ کہیں نا بات کہ ہم تو بھئی ہمارے پاس جو تورات ہے، تم بھی تو تورات کو مانتے ہو نا، تم خود ہی کہتے ہو بھئی کہ تورات کو بھی ہم ساری کتابوں کو مانتے، تو ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں تو کیا برا ہے؟ آج بھی کئی یہودی یہ بات کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے نا سو ہم کہتے ہیں ہم ساری بکس پہ ایمان لاتے، تو کہتے ہیں لو تو پھر ہم اسی پہ ایمان رکھتے نا، تو پھر کیا حرج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کیوں تم پھر قتل کرتے رہے ہو نبیوں کو اللہ کے، من قبل، اس سے پہلے، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، تم تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، ہم ایمان لے کر آئے، ہم جو ہمارے پاس ہے اس پہ ایمان لے کر آئے، تو پھر جب وہ نبی جن کی زبانوں سے یہ تورات ہی تو ادا ہوتی تھی نا، ان نبیوں سے ان کو کوئی پرسنل کوئی دشمنی تھوڑی تھی، بس وہ تورات پڑھ کے سناتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو تورات میں یہ لکھا ہے، تم غلط کر رہے ہو، یہ تم غلط کاریاں چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، تو یہ ان کو جب منہ ان کا نہیں بند کر سکتے تھے تو کیا کر دیتے تھے، اٹھا کے قتل ہی کر دیتے تھے. ان کا یہ حال تھا، یعنی اتنے حد تک یہ گر گئے تھے، تو ان کے اندر یہ عام تھا نبیوں کو جھٹلانا اور قتل کرنا. ایک عام آدمی کو قتل کرنا ہی کتنا سخت گناہ، اور کہاں یہ کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دینا صرف اس لیے کہ ہماری اصلاح کرنے آیا، ہمیں اچھی بات بھی نہ کہے گی، اور کسی نے کئی صحیح بات کہہ دی ہے تو بس اس کو اس کی جان ہی لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اتنے ہی ایمان والے ہو نا تو نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے، پہلے اس بات کا تو جواب دو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہود کی روش کے اوپر چلنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ متقین کی روش پہ ہم لوگوں کو چلائے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری کی پوری کتاب پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك